इजेकील यहेजकेल यहोयाचिन के शासनकाल 597 ईसा पूर्व में बंदी के दूसरे चरण के दौरान बेबीलोन ले जाए गए कई बंदियों में से एक था। यह डैनियल को डिक्सन बाइबल से बेबीलोन ले जाने के लगभग 8 साल बाद की बात है। भविष्यवाणियां पहले 9 अध्यायों में इजेकील ने कई दर्शन देखे, कुछ सरल और कुछ बहुत विस्तृत, लेकिन सभी 3 चरणों में बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाने के साथ यरूशलेम के विनाश से संबंधित हैं। सभी या अधिकांश दर्शनों में यरूशलेम के पूर्ण विनाश का उल्लेख था, जैसे कि ए डॉट पहले 4 प्राणी हैं जो मनुष्य की तरह दिखते हैं, लेकिन प्रत्येक के चेहरे मनुष्य, शेर, चील और बैल के हैं, और पहिए, पैर, पंख, जलते कोयले और आग भी हैं। बी डॉट उसके विरुद्ध घेरा डालो, उसके ऊपर एक ढलान बनाओ, उसके विरुद्ध शिविर लगाओ और उसके चारों ओर मार गिराने वाले मेढ़े लगाओ। सी डॉट मैं राष्ट्रों के सामने तुम्हें दंड दूंगा। तुम्हारी सब घृणित मूर्तों के कारण मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा जो मैंने पहले कभी न किया और न फिर कभी करूंगा। इसलिए तुम्हारे बीच में पिता अबके लड़के को खा जाएंगे और लड़के अबके पिता को खा जाएंगे। डी डॉट मैं तुम्हारे विरुद्ध अकाल और जंगली जानवर भेजूंगा और वे तुम्हें निःसंतान छोड़ देंगे। तुम में विपत्ति और खून खराबा फैल जाएगा और मैं तुम्हारे विरुद्ध तलवार चलाऊंगा, मुझ प्रभु ने कहा है। ई डॉट इसराइल के घराने के सब दुष्ट और घृणित कामों के कारण वे तलवार, महंगी और महामारी से गिरेंगे। एफ डॉट मैं तेरे चाल चलन के अनुसार तेरा न्याय करूंगा और तेरे सब घृणित कामों का बदला तुझे दूंगा। मैं तुम पर दया की दृष्टि से न देखूंगा और न तुम्हें छोड़ूंगा। जी डॉट तुम पर जो देश में रहते हो विनाश आ गया है, समय आ गया है, दिन निकट आ गया है। एच डॉट मैं राष्ट्रों के सबसे दुष्ट लोगों को उनके घरों पर कब्जा करने के लिए लाऊंगा। मैं शूरवीरों का घमंड मिटा डालूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र कर दिए जाएंगे। जब आतंक आएगा तो वे शांति की तलाश करेंगे, लेकिन वहां कोई शांति नहीं होगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और अफवाह पर अफवाह आती रहेगी। आई डॉट मैं क्रोध करके उनसे निपट लूंगा, मैं उन पर दया की दृष्टि से न देखूंगा, न उन पर दया करूंगा। चाहे वे मेरे कान में चिल्लाएं, तो भी मैं उनकी न सुनूंगा। जे डॉट यरूशलेम नगर में घूमो और जो लोग उसमें होने वाले सब घृणित कामों के कारण शोक करते और विलाप करते हैं, उनके माथों पर एक चिन्ह लगाओ। बूढ़ों, जवानों, युवतियों, स्त्रियों और बच्चों का वध करो, परंतु जिस पर यह चिन्ह हो उसे मत छुओ। विनाश अध्याय 10 में एक महत्वपूर्ण घटना की भविष्यवाणी की गई है। भगवान की महिमा मंदिर की दहलीज के ऊपर से निकल जाएगी और करूबों के ऊपर रुक जाएगी। भगवान मंदिर से चले गए हैं। यरूशलेम के विनाश का समय निकट है। परमेश्वर ने विपत्तियों, अकाल और तलवार से मृत्यु की प्रतिज्ञा की है। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उन्होंने उसके चारों ओर घेराबंदी की। अत नगर सिदकियाह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। 4वें महीने के 9वें दिन को नगर में इतना भयंकर अकाल पड़ा कि देश के लोगों के लिए भोजन न रहा। 2 राजा 25:1-3 से बेबीलोन की पहली घेराबंदी 606 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समूह में डैनियल और अन्य लोगों को बंदी बना लिया गया था। 2रा निर्वासन 597 ईसा पूर्व में हुआ। यहेजकेल इस समूह में था और उसने इस विजय के दौरान 10,000 बंदी बनाए गए लोगों के लिए भविष्यवाणी की थी। 3री घेराबंदी 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम को लूट लिया गया, मंदिर को नष्ट कर दिया गया और अधिकांश आबादी को बंदी बना लिया गया। उपरोक्त सभी के माध्यम से यिर्मयाह यरूशलेम में प्रचार कर रहा था। यहूदा एकमात्र राष्ट्र नहीं था जिसे ईश्वर ने दंडित करने का वादा किया था। यहेजकेल ने विशेष रूप से उल्लेख किया है। अम्मोन, देखो मैं तुमको पूर्व के लोगों के हाथ में कर देता हूँ कि वे उनका निज भाग हो जाएं, और वे तुम्हारे बीच अपके डेरे डालेंगे और तुम्हारे बीच में अपके डेरे बसाएंगे। वे तेरा फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा को ऊँटों की चरागाह और अम्मोन को भेड़बकरियों का चरागाह बनाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तुमने ताली बजाई और पाँव पटके और इसराइल के देश के विरुद्ध अपने मन में सारे बैर भाव भरते हुए आनंद किया। मोआब, मैं इसे अम्मोनियों के साथ पूर्व के लोगों को अधिकार के रूप में दे दूंगा। एदोम, मैं अपना हाथ एदोम के विरुद्ध बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूंगा, और मैं उसे उजाड़ दूंगा। फिलिस्तिया, मैं क्रोध भरी डांट से उनसे बड़ा पलटा लूंगा। तब जब मैं उनसे पलटा लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। थका देना, देख हे सोर, मैं तेरे विरुद्ध हूं, और जैसे समुद्र अपनी लहरें उठाता है, वैसे ही मैं तेरे विरुद्ध बहुत सी जातियों को उभारूंगा। वे सोर की शहरपनाह को ढा देंगे और उसके गुम्मटों को ढा देंगे, और मैं उसकी मिट्टी को खुरचकर उसे नंगी चट्टान बना दूंगा। सिडोन, मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में खून फैलाऊंगा, और जो तलवार उसके चारों ओर से उसके विरुद्ध है, उससे उसके बीच में मारे हुए गिरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मिस्र, मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और मनुष्य और पशु दोनों को तुम्हारे बीच में से नाश करूंगा, और मिस्र देश उजाड़ और उजाड़ हो जाएगा। चौकीदार, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ ठहराया है, इसलिए जो वचन मैं कहता हूँ उसे सुनो और उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दो। जब मैं दुष्ट से कहता हूँ, हे दुष्ट मनुष्य, तू निश्चय मरेगा, और तू उसे उसके मार्ग से विचलित करने के लिए कुछ न बोले, तब वह दुष्ट अपने पाप के कारण मरेगा, और मैं उसके खून का लेखा तुझ से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को चिताए कि अपने मार्ग से फिर जाए, और वह ऐसा न करे, तो वह तो अपने पाप के कारण मर जाएगा, परंतु तू अपने आप को बचा लेगा। मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि इससे प्रसन्न होता हूँ कि वे अपने मार्ग से फिर जाएं और जीवित रहें। मोड़, अपने बुरे मार्ग से फिरो। हे इसराइल के घराने, तुम क्यों मरोगे? इसलिए हे मनुष्य के संतान, अपने देशवासियों से कह कि जब धर्मी मनुष्य आज्ञा न माने, तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और जब दुष्ट मनुष्य अपनी दुष्टता से फिर जाए, तब वह उसे ठोकर न खिलाएगा। धर्मी मनुष्य यदि पाप करे, तो उसे उसकी पहली धार्मिकता के कारण जीवित रहने न दिया जाएगा। यदि मैं धर्मी मनुष्य से कहूँ कि वह निश्चय जीवित रहेगा, परंतु वह अपने धर्म पर भरोसा करके बुराई करेगा, तो उसके किए हुए धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा, वह अपने किए बुरे कामों के कारण मरेगा। और यदि मैं उस दुष्ट से कहूँ, तू निश्चय मरेगा, परंतु वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात जो कुछ उसने बंधक करके उधार लिया हो उसे लौटा दे, और जो कुछ उसने चुराया है उसे लौटा दे, जो जीवन देने वाली विधियों का पालन करता है और कोई बुराई नहीं करता, वह निश्चय जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। उसके द्वारा किए गए पापों में से कोई भी उसके लिए स्मरण न किया जाएगा। उसने वही किया है जो उचित और उचित है, वह अवश्य जीवित रहेगा। मैं तुम में से प्रत्येक का उसके अपने ढंग के अनुसार न्याय करूंगा। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर का स्वभाव प्रेम, न्याय और दया है। वह नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। जब भी कोई उसके पास लौटता है, तो वह हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता है। चौकीदार का कार्य मूलतः एक चरवाहे का होता है। एक चरवाहा शिकारियों पर नजर रखता है, जैसे भेड़िये और चोर। एक अच्छा चरवाहा भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है। वह रात में उनकी सुरक्षा के लिए बाड़ बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मसीह के शरीर, उसके चर्च के नेताओं का कार्य है। टिप्पणियां समाप्त करें। भविष्य का दृष्टिकोण। अध्याय 37 के आरंभ में दर्शन दिए गए हैं। इन दर्शनों की व्यक्तिगत व्याख्याएं निम्नलिखित हैं। वे सही, आंशिक रूप से सही या पूरी तरह गलत हो सकते हैं। सूखी हड्डियों की घाटी। बिखरी हुई सूखी हड्डियां बेबीलोनियों की कैद के दौरान खोए गए सैनिकों और आवासों के जीवन का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। तब उनका जीवित होना कैद से उनकी रिहाई और वादा किए गए देश में वापसी होगी। यदि नई वाचा को लागू किया जाए तो पाप में मृत लोगों को एक नया जीवन दिया जाता है, पाप माफ कर दिया जाता है और वे एक नई और बेहतर वादा की गई भूमि स्वर्ग की ओर जाते हैं। दो छड़िया। एप्रैम शायद उत्तरी राज्य, विद्रोही लोग जिन्होंने मूर्तियों के लिए भगवान को छोड़ दिया। वे उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर के नहीं हैं, जबकि यहूदा उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभी भी परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। इसलिए मैं उनके साथ एक नई वाचा बांधूंगा, उन्हें उनके पापों से मुक्त करके एक राज्य क्राइस्ट चर्च की स्थापना करूंगा। दाऊद के वंश का यीशु उनका राजा होगा और मेरा निवास स्थान उनके बीच रहेगा। गोग। गोग इसराइल के उत्तर में मागोग का राजा है। जोसेफस मैगोगाइट्स की पहचान सीथियन से करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक बाइबल विश्वकोश से। वे यूरेशिया के प्राचीन खानाबदोश लोग थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि एटिला सीथियन का था। ईश्वर और मागोग का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 29:8 में भी किया गया है। शत्रु को उसके कारावास से मुक्त किया जाएगा और वह उन राष्ट्रों को भटकाने के लिए आगे बढ़ेगा जो पृथ्वी के चारों कोनों में हैं। गोग और मागोग उन्हें इकट्ठा करने के लिए युद्ध के लिए एक साथ। इसलिए भविष्यवाणी उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है जो भगवान के खिलाफ हैं। माप। निर्वासन में रहने वालों ने शायद सोचा होगा कि जब वे अपनी वादा की गई भूमि पर लौटेंगे तो मंदिर सबसे शानदार और सुंदर जगह होगी जहां भगवान लौटेंगे और उसमें निवास करेंगे। लेकिन माप इसे भगवान के शाश्वत निवास स्थान से संबंधित प्रतीत होता है। इजेकील के मुख्य बिंदु। सभी दुष्ट और घृणित कामों के कारण इसराइल तलवार, अकाल और महामारी से गिर जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा और तुम्हारे सब घृणित कामों का बदला तुम्हें देगा। यहोवा की महिमा मंदिर की देली के ऊपर से निकलकर करूबों के ऊपर ठहर जाएगी। जब भगवान मंदिर से चले जाते हैं तो विनाश का समय निकट होता है। एक चौकीदार के रूप में आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और बुराई करने वालों को परमेश्वर की ओर लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। धर्मी मनुष्य जब आज्ञा न माने तब उसका धर्म उसे न बचाएगा, और जब दुष्ट मनुष्य अपनी दुष्टता से फिरे तब वह उसे ठोकर न खिलाएगा। अत कोई ईश्वर को त्याग सकता है? मैं तुम में से हर एक का न्याय उसके अपने ढंग के अनुसार करूंगा।